एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
इस चर्चा में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी एक साथी मेजबान
और मैं हूं आपका दूसरा साथी मेजबान। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, मैल्कम ग्लैडवेल की द टिपिंग पॉइंट, हाउ लिटिल थिंग्स कैन मेक अ बिग डिफरेंस।
हाँ बिल्कुल, ये किताब ना इस चीज को समझने की कोशिश करती है कि भाई कुछ आइडियाज या फैशन या आदतें वो कैसे एकदम से वायरल हो जाती हैं,
सही।
जबकि कुछ दूसरी चीजें बस शुरू ही नहीं हो पाती।
ग्लैडवेल इसी पॉइंट को कहते हैं टिपिंग पॉइंट, वो खास पल।
और आज के जमाने में तो ये समझना बहुत जरूरी हो गया है ना, मतलब रोज ही देखते हम कोई मीम है, कोई गाना,
हाँ
कोई चैलेंज,
हाँ कोई सोशल मीडिया ट्रेंड रातों रात फैल जाता है। तो क्या ये बस लक है, किस्मत, या इसके पीछे कोई साइंस है? ग्लैडवेल का कहना है कि हाँ, इसके पीछे एक पैटर्न है, एक तरह का विज्ञान।
और यही बात मजेदार है।
तो पहले थोड़ा लेखक के बारे में जान लें, मैल्कम ग्लैडवेल।
हाँ बिल्कुल, ये ब्रिटिश कनाडाई पत्रकार हैं, लेखक हैं, स्पीकर भी हैं, और काफी टाइम से मतलब 1996 से द न्यूयॉर्कर मैगजीन के लिए लिख रहे हैं, जो अपने आप में एक बड़ी बात है।
सही। और इनकी खासियत ये है कि ये खुद कोई लैब में बैठ के रिसर्च नहीं करते।
नहीं,
ये क्या करते हैं, अलग अलग फील्ड से, जैसे साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, वहां की रिसर्च उठाते हैं, कुछ किस्से कहानियां लेते हैं और उनको जोड़कर एक बड़ी समझने लायक तस्वीर बना देते हैं। एक तरह से आइडिया कनेक्टर कह सकते हैं इनको।
बिल्कुल सही शब्द है, आइडिया कनेक्टर। और उनका जो बैकग्राउंड है ना, माँ जमैकन, पिता ब्रिटिश, और फिर पत्रकारिता का इतना लंबा अनुभव, ये सब मिलकर उन्हें समाज में जो बदलाव होते हैं उन्हें देखने का एक अलग ही नज़रिया देता है। वो मुश्किल एकेडमिक बातों को भी आम लोगों के लिए दिलचस्प कहानियों में बदल देते हैं, इसीलिए शायद इनकी किताबें इतनी पढ़ी जाती हैं।
तो आते हैं किताब पर, द टिपिंग पॉइंट। आखिर यह है किस बारे में? सेंट्रल आइडिया यह है कि विचार, प्रोडक्ट, मैसेज, आदतें, ये सब समाज में फैलते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कोई कोई बीमारी फैलती है।
हाँ, ग्लैडवेल इन्हें सोशल एपिडेमिक्स या सामाजिक महामारी कहते हैं। सुनने में थोड़ा शायद डरावना लगे,
हाँ थोड़ा सा,
पर सोचने वाली बात है। समानता तो है, कोई चीज कैसे एक से दूसरे तक पहुंचती है, फिर तेजी से फैलती है।
बिल्कुल। और ये फैलाव ऐसा नहीं कि बस धीरे धीरे होता रहता है। किताब का मेन पॉइंट यही है कि ये चीजें तब तेजी से फैलती हैं जब वो एक खास मुकाम पर पहुंच जाती हैं, जिसे वो कहते हैं टिपिंग पॉइंट।
उस पॉइंट के बाद ऐसा लगता है जैसे कोई कोई स्विच ऑन हो गया हो।
हाँ, जैसे कोई बांध टूट गया हो, वो चीज एकदम से फैल जाती है।
तो ग्लैडवेल यही सवाल पूछते हैं, क्यों कुछ चीजें इस पॉइंट तक पहुंचती हैं और कुछ नहीं पहुंच पाती? और वो कहते हैं कि इसके पीछे काम करते हैं तीन खास नियम।
कौन कौन से?
पहला है द लॉ ऑफ द फ्यू, मतलब कुछ खास लोगों का नियम, यानी कुछ खास तरह के लोग होते हैं जो इन चीजों को फैलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं।
अच्छा।
दूसरा द स्टिकीनेस फैक्टर, चिपकने वाला गुण, मतलब जो आइडिया या मैसेज फैलाया जा रहा है उसमें खुद में कुछ ऐसा होना चाहिए जो लोगों के दिमाग में चिपक जाए, यादगार बन जाए।
और तीसरा?
तीसरा है द पावर ऑफ कॉन्टेक्स्ट, यानी माहौल की ताकत। जिस माहौल या हालात में वो आइडिया फैल रहा है उसका भी बहुत बड़ा रोल होता है।
और इन तीनों नियमों को समझाने के लिए ग्लैडवेल बड़े मजेदार उदाहरण देते हैं, जैसे वो हश पपीज जूतों का जिक्र करते हैं, कैसे वो अचानक से फैशन में आ गए।
हाँ, या फिर न्यूयॉर्क शहर में क्राइम रेट का एकदम से नीचे गिर जाना, ये सब वो इन्हीं तीन नियमों से समझाते हैं।
चलो इन नियमों को थोड़ा और करीब से देखते हैं।
हाँ
पहला नियम, द लॉ ऑफ द फ्यू, कुछ खास लोगों का नियम। ग्लैडवेल कहते हैं कि किसी भी ट्रेंड को फैलाने का ज्यादातर काम, शायद 80% काम, मुट्ठी भर लोग करते हैं, मतलब सिर्फ 20% लोग।
हाँ ये पैरेटो प्रिंसिपल जैसा है, 80-20 रूल। तो ये कौन लोग हैं? ग्लैडवेल इन्हें तीन टाइप का बताते हैं। पहले है कनेक्टर्स, जोड़ने वाले। ये वो लोग हैं जिनकी जान पहचान बहुत ज्यादा होती है, और सिर्फ ज्यादा नहीं, अलग अलग तरह के लोगों से, अलग अलग ग्रुप्स में।
अच्छा, जैसे अपने फ्रेंड सर्कल में कोई एक होता है ना, जिसकी पार्टी में जाओ तो हर फील्ड का बंदा मिल जाता है।
बिल्कुल वही, ये लोग अलग अलग दुनियाओं को, अलग अलग ग्रुप्स को जोड़ने का काम करते हैं, पुल की तरह।
ग्लैडवेल इसका एक क्लासिक उदाहरण देते हैं पॉल रिवियर की कहानी से, अमेरिकी क्रांति के टाइम पे।
हाँ, वो आधी रात की राइड वाला किस्सा।
हाँ, रिवियर एक और शख्स थे, विलियम डॉस। दोनों एक ही खबर लेकर निकले थे कि अंग्रेज आ रहे हैं, लेकिन रेवियर कहीं ज्यादा लोगों को आगाह कर पाए
क्योंकि वो कनेक्टर थे, उनके सोशल कॉन्टैक्ट बहुत ज्यादा थे, वो ज्यादा लोगों को जानते थे और लोग उन्हें जानते थे।
सही, तो ये हुए कनेक्टर्स। दूसरे टाइप के लोग कौन है?
दूसरे हैं मेवन्स, मतलब जानकारी के महारथी। ये वो लोग होते हैं जिन्हें जानकारी इकट्ठा करना और फिर उसे दूसरों के साथ शेयर करना पसंद होता है।
अच्छा,
ये मार्केट पे नजर रखते हैं, नए प्रोडक्ट्स के बारे में जानते हैं, किस डील में फायदा है ये सब। और ये जानकारी सिर्फ इसलिए शेयर करते हैं क्योंकि उन्हें मदद करना अच्छा लगता है, लोग इनसे सलाह लेने जाते हैं।
तो ये वो दोस्त हुए जिनसे हम पूछते हैं कि यार कौन सा फोन लूं या सबसे अच्छा रेस्टोरेंट कौन सा है।
हाँ बिल्कुल, आजकल के जो टेक रिव्यूअर्स हैं या फूड ब्लॉगर्स, वो शायद मेवन की कैटेगरी में आ सकते हैं। वो रिसर्च करते हैं और अपनी फाइंडिंग्स शेयर करते हैं।
और तीसरे?
तीसरे हैं सेल्समैन, यकीन दिलाने वाले। इनमें गजब की काबिलियत होती है लोगों को अपनी बात मनवाने की। ये सिर्फ लॉजिक से नहीं, अपने जोश से, अपने अंदाज से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपनी पर्सनैलिटी से लोगों को यकीन दिला देते हैं। इनकी बातों में वो वजन होता है कि लोग आसानी से मान जाते हैं।
तो मतलब किसी आइडिया को तेजी से फैलाना है तो इन तीनों का नेटवर्क में होना जरूरी है। कनेक्टर उसे फैलाएगा, मेवन जानकारी देगा और भरोसा बनाएगा, और सेल्समैन उसे बेच देगा या मनवा देगा।
एग्जैक्टली, लेकिन जैसा मैंने कहा, सिर्फ सही लोग होना ही काफी नहीं है, दूसरा नियम भी उतना ही जरूरी है, द स्टिकीनेस फैक्टर, चिपकने वाला गुण।
हाँ, मतलब वो आइडिया या मैसेज खुद भी ऐसा होना चाहिए जो दिमाग में चिपक जाए, याद रह जाए, और सिर्फ याद ही ना रहे बल्कि लोगों को कुछ करने पर मजबूर भी करे।
सही, उसे स्टिकी होना चाहिए। ग्लैडवेल इसके लिए बच्चों के फेमस टीवी शो सेसम स्ट्रीट का उदाहरण देते हैं।
हाँ, वो तो सबने देखा होगा।
हाँ, तो उसके जो बनाने वाले थे, उन्होंने बहुत रिसर्च की ये समझने के लिए कि बच्चों का ध्यान कैसे खींचा जाए, उन्हें कैसे सिखाया जाए ताकि वो बात उनके दिमाग में बैठ जाए। उन्होंने शो को इतना एंगेजिंग, इतना मजेदार बनाया कि वो वाकई स्टिकी बन गया।
अच्छा, और कोई उदाहरण?
एक और बहुत जबरदस्त उदाहरण है टिटनेस शॉट वाली स्टडी का। उन्होंने कॉलेज स्टूडेंट्स के दो ग्रुप बनाए। एक ग्रुप को सिर्फ टिटनेस के खतरों के बारे में लेक्चर दिया, दूसरे ग्रुप को लेक्चर भी दिया और साथ में कैंपस का एक नक्शा दिया जिसमें हेल्थ सेंटर मार्क किया हुआ था, और उनसे कहा गया कि वो सोचें कि किस खास दिन और किस खास समय पर वो शॉट लगवाने जाएंगे।
अच्छा, मतलब सिर्फ जानकारी नहीं दी बल्कि एक प्लान बनाने में मदद की।
हाँ, और नतीजा क्या हुआ, जिस ग्रुप को नक्शा मिला था और जिन्होंने प्लान के बारे में सोचा था, उस ग्रुप के कहीं ज्यादा स्टूडेंट्स सच में शॉट लगवाने गए।
अरे वाह,
वो छोटी सी चीज, नक्शा और सोचने का प्रॉम्प्ट, उसने उस मैसेज को सिर्फ एक जानकारी से एक एक्शन में बदल दिया। उसने मैसेज को स्टिकी बना दिया।
मतलब संदेश ऐसा हो जो सिंपल हो, याद रखने लायक हो और जिस पर अमल करना आसान लगे।
बिल्कुल, उसे प्रैक्टिकल बनाना पड़ता है।
अब आते हैं तीसरे नियम पर, और ये शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है, द पावर ऑफ कॉन्टेक्स्ट, माहौल की ताकत।
हाँ, ये वाकई सोचने पे मजबूर करता है।
ग्लैडवेल कहते हैं कि हमारा जो बर्ताव है वो इस बात पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है कि हम किस माहौल में हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि लोग जैसा करते हैं वो उनका नेचर है, उनका कैरेक्टर है।
हाँ, हम कहते हैं ना, वो तो है ही ऐसा।
सही, पर ग्लैडवेल कहते हैं कि नहीं, माहौल का असर शायद हमारे कैरेक्टर से भी ज्यादा होता है।
इसका सबसे फेमस उदाहरण वो देते हैं 1990 के दशक में न्यूयॉर्क शहर का। वहाँ क्राइम रेट अचानक बहुत तेजी से गिरा था।
हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में।
कई लोग इसका क्रेडिट देते हैं ब्रोकन विंडोज थ्योरी को, टूटी खिड़की का सिद्धांत।
ये क्या है?
ये थ्योरी कहती है कि अगर छोटी मोटी गड़बड़ियाँ जैसे दीवारों पर लिखना या खिड़कियों के शीशे टूटे होना या सबवे में बिना टिकट सफर करना, अगर इन चीज़ों को नज़रअंदाज किया जाए तो ये एक ऐसा सिग्नल भेजती हैं कि यहाँ किसी को परवाह नहीं है, और ये माहौल फिर बड़े अपराधों को बढ़ावा देता है।
अच्छा, तो मतलब छोटी चीजें बड़ा सा डालती हैं।
हाँ, तो जब न्यूयॉर्क पुलिस ने इन छोटी चीजों पर ध्यान देना शुरू किया, जैसे सबवे को साफ करवाया, दीवारों से ग्राफिटी हटवाई, छोटे मोटे जुर्मों पर सख्ती की, तो बड़े और गंभीर अपराधों में भी भारी कमी आ गई।
तो माहौल बदला और लोगों का बर्ताव भी बदल गया, ये तो कमाल की बात है। हालांकि शायद और भी कारण रहे होंगे क्राइम कम होने के।
हाँ बिल्कुल, इकोनॉमी सुधारना वगैरह, लेकिन माहौल का असर भी एक बड़ा फैक्टर माना जाता है।
अच्छा, और माहौल का कोई और पहलू?
हाँ, माहौल का एक और पहलू है ग्रुप का साइज, समूह का आकार। यहाँ ग्लैडवेल डनबार नंबर का जिक्र करते हैं।
डनबार नंबर?
हाँ, एक ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे रॉबिन डनबार। उन्होंने रिसर्च की और पाया कि इंसान औसतन करीब 150 लोगों के साथ ही मीनिंगफुल गहरे रिश्ते निभा सकता है।
सिर्फ 150?
हाँ, लगभग। इससे बड़ा ग्रुप होने पर आपसी भरोसा, तालमेल, वो सब कम होने लगता है, ग्रुप टूट सकता है।
इसका कोई उदाहरण दिया है ग्लैडवेल ने?
हाँ, उन्होंने गॉटेक्स बनाने वाली कंपनी WL गौर एंड एसोसिएट्स का उदाहरण दिया है। कंपनी के जो फाउंडर थे बिल गौर, उन्होंने एक नियम बनाया था कि किसी भी ऑफिस बिल्डिंग में 150 से ज्यादा लोग काम नहीं करेंगे।
अरे क्यों?
ताकि वो छोटे ग्रुप वाली फीलिंग बनी रहे। जैसे ही कोई टीम 150 के साइज के पास पहुंचती, वो एक नई छोटी यूनिट बना देते थे।
और इसका फायदा क्या हुआ?
फायदा ये हुआ कि कंपनी में हमेशा एक छोटे क्लोज निट ग्रुप जैसा माहौल रहा, जहां लोग एक दूसरे को जानते थे, भरोसा करते थे। इससे इनोवेशन और आपसी सहयोग बहुत बढ़ा।
मतलब नए आइडियाज फैलाने हों या कोई खास कल्चर बनाए रखना हो तो छोटे मजबूत ग्रुप ज्यादा असरदार होते हैं। 150 वाला नियम?
बिल्कुल।
तो अगर हम इन सब बातों को समेटें तो कुछ खास थीम्स या संदेश निकल कर आते हैं। सबसे पहली तो यही कि विचार और आदतें वायरस की तरह फैलती हैं।
हाँ, ये सोशल ट्रेंड्स को देखने का एक नया तरीका है। ये कोई जादू नहीं, एक पैटर्न है।
दूसरा, कुछ खास लोगों का बड़ा रोल होता है, वो कनेक्टर्स, मेवन, सेल्समैन। ये सोचना कि समाज में सबका असर बराबर होता है शायद सही नहीं है।
बिल्कुल। आजकल के इन्फ्लुएंसर्स को देखो तो ये बात और भी साफ लगती है ना? कुछ लोगों की आवाज ज्यादा दूर तक जाती है।
सही कहा। तीसरी थीम है कि मैसेज का चिपचिपा होना बहुत जरूरी है। बात क्या कही जा रही है उससे ज्यादा शायद ये जरूरी है कि कैसे कही जा रही है। उसे यादगार और असरदार बनाना, वो एक कला है।
हाँ, और भारत में कई विज्ञापन या सोशल कैंपेन इसी वजह से चलते हैं। उनमें वो स्टिकीनेस होती है, वो दिमाग में रह जाते हैं।
चौथा, जो मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है, वो है माहौल का हमारे व्यवहार पर असर। कैरेक्टर से ज्यादा कॉन्टेक्स्ट।
हाँ, ये थोड़ा हिला देने वाला आइडिया है। हम सोचते हैं हम कितने इंडिपेंडेंट हैं अपने फैसलों में, पर हमारा माहौल हमें कितना कंट्रोल करता है।
सोचो, ट्रैफिक में हमारा बर्ताव या ऑफिस में हमारा काम करने का तरीका, कितना कुछ हमारे आसपास के माहौल पर निर्भर करता है।
बिल्कुल। और पांचवी, एक उम्मीद जगाने वाली बात कि छोटे सही जगह पर किए गए बदलाव भी बड़ा असर डाल सकते हैं।
हाँ, ये जरूरी नहीं कि बदलाव लाने के लिए हमेशा बहुत बड़ा रिसोर्स चाहिए। सही लोग, सही मैसेज, सही माहौल, ये मिलकर छोटे से एक्शन को भी टिप करा सकते हैं।
और आखिरी, वो 150 वाला नियम, कम्युनिटी या संगठन की बनावट बहुत मायने रखती है। छोटे आपस में जुड़े हुए समूह ज्यादा असरदार होते हैं।
किताब में कुछ कोट्स या पंक्तियां ऐसी हैं जो इन आइडियाज को बहुत अच्छे से बयान करती हैं।
हाँ, जैसे एक है, टिपिंग पॉइंट वो जादुई पल है जब कोई विचार, ट्रेंड या सामाजिक व्यवहार एक सीमा पार करता है, पलटता है और जंगल की आग की तरह फैल जाता है।
ये तो जैसे पूरी किताब का सार है एक लाइन में।
बिल्कुल। बदलाव अचानक और तेजी से होता है। और दूसरी बात, किसी भी सामाजिक महामारी की कामयाबी काफी हद तक उन लोगों पर निर्भर करती है जिनमें खास और दुर्लभ सामाजिक गुण होते हैं।
और स्टिकीनेस पर ये लाइन देखो, जानकारी को पैक करने का एक आसान तरीका है जो सही हालात में उसे अनूठा बना सकता है। आपको बस उसे ढूंढना है।
मतलब ये हमारे ऊपर है, क्रिएटिविटी की बात है। हम अपने मैसेज को कितना यादगार और असरदार बना सकते हैं, ये हमें सोचना है।
और माहौल पर ये बात, माहौल की ताकत कहती है कि इंसान अपने पर्यावरण के प्रति जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा संवेदनशील होते हैं।
हाँ, ये एक रिमाइंडर है कि अपने आसपास की दुनिया पर ध्यान दो, और अगर कुछ बदलना है तो शायद माहौल को बदलने से शुरुआत करो।
इन सब आइडियाज का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में काफी इस्तेमाल हो सकता है। सोचो बिजनेस और मार्केटिंग में।
हाँ बिल्कुल। कंपनियां सिर्फ टीवी पर एड देने के बजाय सही कनेक्टर्स, मेवन्स और सेल्समैन को टारगेट कर सकती हैं।
अपने प्रोडक्ट या मैसेज को ज्यादा स्टिकी कैसे बनाया जाए इस पर सोच सकती हैं। जैसे कोई नया ऐप लॉन्च हो रहा है तो शायद टेक ब्लॉगर्स जो मेवन हो सकते हैं या पॉपुलर सोशल मीडिया हस्तियों जो कनेक्टर हो सकते हैं को पहले एक्सेस देना।
सही। या फिर पब्लिक हेल्थ के अभियानों में, जैसे स्मोकिंग छोड़ने का कैंपेन है, तो सिर्फ ये बताने के बजाय कि ये खतरनाक है, शायद इस पर फोकस करें कि ये कूल नहीं है। या फिर जैसे वो टिटनेस शॉर्ट स्टडी थी।
हाँ, लोगों को एक्शन लेने में मदद करना, नक्शा देना, अपॉइंटमेंट बुक करने में मदद करना।
या फिर वैक्सीन लगवाने के लिए गांव के किसी भरोसेमंद बुजुर्ग, जो मेवन हो सकते हैं।
और एजुकेशन में भी, टीचर्स अपने लेसन को ज्यादा स्टिकी कैसे बना सकते हैं, शायद कहानी सुनाकर या कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग करवाकर।
हाँ, जैसे वो ब्लूज क्लूज शो करता था। और पेरेंटिंग में भी, बच्चों को सिर्फ लेक्चर देने के बजाय घर का माहौल ऐसा बनाना कि अच्छी आदतें खुद ब खुद पनपे।
और सामाजिक बदलाव, अगर कोई आंदोलन खड़ा करना है या कम्युनिटी बनानी है
तो भी ये नियम काम आ सकते हैं। सही लोगों को जोड़ना, कनेक्टर्स, मेवन सेल्समैन, एक ऐसी कहानी गढ़ना जो लोगों के दिल में उतर जाए, स्टिकीनेस। और सही समय और जगह चुनना, कॉन्टेक्स्ट, और वो 150 वाला नियम भी ध्यान में रखना ताकि ग्रुप मजबूत बना रहे।
यहाँ तक कि अपनी पर्सनल लाइफ में भी, हम अपने आइडियाज़ को बेहतर तरीके से कैसे पेश करें ताकि वो स्टिकी हों।
हाँ, और अपने नेटवर्क में पहचाने कि कौन कनेक्टर है, कौन मेवन, कौन सेल्समैन। और सबसे ज़रूरी ये समझें कि हमारा खुद का बर्ताव हमारे माहौल से कितना जुड़ा है। शायद हम खुद को और दूसरों को बेहतर समझ पाएंगे। इस पूरी चर्चा से मेरे लिए जो सबसे बड़ी सीख है वो शायद ये है कि बदलाव उतना भी मुश्किल या आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है जैसा हम कभी कभी मान लेते हैं। इसके पीछे कुछ प्रिंसिपल्स काम करते हैं। अगर हम उन्हें समझें तो हम भी बदलाव लाने में भागीदार बन सकते हैं। और ये कि छोटी छोटी चीजें वाकई बहुत बड़ा फर्क डाल सकती हैं, ये एक उम्मीद देने वाली बात है।
मेरे लिए सबसे दिलचस्प यही सोचना रहा कि कैसे हमारे आसपास का माहौल, हमारा शहर, हमारा ऑफिस, हमारा सोशल सर्कल हमारे व्यवहार को कितने चुपचाप तरीके से गाइड करता रहता है। और ये कि अगर हम कुछ बदलना चाहते हैं तो शायद सिर्फ लोगों को बदलने की कोशिश करने के बजाय माहौल को बदलना ज्यादा असरदार हो सकता है। ये किताब दुनिया को देखने का एक नया नजरिया देती है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है।
ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।